मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 17 अगस्त 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत ही आत्मीय रूप से अभिनंदन भी करता हूं। फ्रेंड्स, आज सुबह के अखबार में एक खबर पढ़कर मन थोड़ा निराश सा हो गया, यूं कह लीजिए कि उदास सा हो गया। निराश और उदास यह सोच कर हुआ कि हम सब की जिंदगियों में कोई न कोई ऐसा दौर आता है, या यूं कह लीजिए एक ऐसे दौर की शुरुआत हो जाती है जब हमारी अपनी खिलखिलाती, नाचती, कूदती, थकी, दौड़ लगाती, रोती हुई दुनिया धीरे 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 एल्बम में कैद होना शुरू हो जाती है, चाहे वह दिमाग में स्मृतियों के रूप में कैद हो रही हो, या यूं कह लीजिए कि घर की दीवारों पर तस्वीरों के रूप में टंग रही हो। दरअसल सुबह जब मैंने अखबार में यह खबर पढ़ी, मेरी पत्नी प्रीति अग्रवाल ने बताया कि शंकर दयाल शर्मा, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी पत्नी विमला शर्मा जी नहीं रही, कल उनका निधन हो गया। वो 93 ईयर्स की थी। तो सबसे पहले तो मित्रों, मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उन्हें बहुत बहुत हार्दिक रूप से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। दोस्तों, आज मैं इन्हीं के व्यक्तित्व के कुछ पहलू, एक ऐसे पहलू जो सच में जिनके बारे में हम सोच नहीं पाते हैं, आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। देखिए, होता क्या है कि जब भी हम किसी बड़े व्यक्ति के बारे में सुनते हैं, अगर नहीं भी सुनते हैं तो अपनी तरफ से सोचते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो बड़े व्यक्ति हैं इनकी जिंदगियां कुछ दूसरे तरीके की होती होंगी। उसमें आप राजनेताओं को ले सकते हैं, बड़े बड़े अफसरों को ले सकते हैं, धनी लोगों को ले सकते हैं, इस फिल्म स्टार्स खिलाड़ियों को ले सकते हैं। हमारा मन पता नहीं क्यों ये मानने को करता ही नहीं है कि ये भी हमारी तरह ही जिंदगी जी रहे होंगे, जबकि दोस्तों सच पूछिए तो जिंदगी सबके लिए बराबर ही होती है, बशर्ते कि आप उनकी अंदर के परतों तक पहुंच पाए, और पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने विमला शर्मा जी की ऐसी ही कुछ बातें जो सीधे सीधे मेरे और मेरी पत्नी प्रीति के संस्मरण से जुड़ी हुई हैं, स्मृतियों से जुड़ी हुई हैं, आपके सामने रखने जा रहा हूं। हम लोगों ने 8.5-9 साल तक उनके साथ काम किया है। हम लोगों का मतलब, ठीक है, मैं तो एक सरकारी अधिकारी के रूप में उपराष्ट्रपति भवन में और राष्ट्रपति भवन में काम कर ही रहा था, लेकिन मेरी पत्नी का भी खासकर विमला शर्मा जी से मिलना होता रहता था। बीच बीच में वो बुला लेती थी, मेरी पत्नी चली जाती थी, और लौटने के बाद वो बताती थी कि किस तरीके से वो बिल्कुल उसी तरह से बातचीत करती हैं जिस तरह से हमारी कोई आम महिला करती है, और हम ये सोच नहीं पाते कि सच में ऐसी ही स्थितियां उनके साथ भी होती होंगी। उदाहरण के तौर पर, जैसे वो बातचीत करने के दौरान बातचीत कर रही हैं कि अरे, अपने समय में जब चूल्हे की रोटियां सिकती थी तो उनका तो स्वाद ही कुछ अलग होता था, खाना भी बनता था तो उसकी क्या बात थी। अब आजकल तो ये लोग खाना बना देते हैं, स्वाद वाद कुछ रहता नहीं है, बात खत्म हो जाती है, इनमें क्या मजा है। ये बात वो कह रही हैं जिनके पास कुक की बहुत बड़ी फौज मौजूद है। उनकी भी ये शिकायत है, कुछ इस तरह की शिकायतें हैं जो हम लोगों की शिकायतें होती हैं, कि ये जितने भी लोग हैं ना, इन सब से मैं कहती हूँ कि भाई, शाम को जब सूर्यास्त हो जाता है तो ये सब्जी भाजी मत तोड़ा करो, क्योंकि वो भी सो जाते हैं, पेड़ पौधे भी हमारे सो जाते हैं, लेकिन ये मानते कहाँ हैं। कितनी बार भी कह लो, जब भी देखो तो शाम को ही वो सब्जियां तोड़ने पहुंच जाते हैं। वो कहती हैं कि मैंने कितनी बार कहा कि भाई, मुझे हरड़ ला करके दे दो। हरड़ आप समझते होंगे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता है, हरड़ ला करके दे दो, लेकिन अभी तक मुझे कोई हरड़ ही ला करके नहीं दिया। तो फिर मेरी पत्नी ने कहा कि मेरे पास हरड़ है, मैं भिजवा दूंगी। तो फिर उन्होंने अपने घर से हरड़ भिजवाई। इसके जरिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इसके जरिए मैं आपके दिमाग से उस कुंठा को, या कुंठा न कहें तो उस गलतफहमी को निकालना चाह रहा हूं जो जिंदगी तक हमें सही रूप से पहुंचने से रोकती है। जिंदगी जिंदगी ही होती है। आपको यह सुनकर शायद ताज्जुब होगा कि इस उम्र में भी, अभी तो चलिए वो 93 इयर्स की हैं और शंकर दयाल शर्मा जी के निधन को भी लगभग लगभग 20 साल हो गए हैं, तो समझ लीजिए 20 साल घटा दीजिए, तो जब वो 70 साल की रही होंगी थी, उस समय भी कभी कभी उनका मन होता था कि वो अपने हाथ से शंकर दयाल शर्मा जी के लिए, लेकिन चलिए इसे हम दूसरी भाषा में कहें, अपने पति के लिए भोजन बनाएं। और वो ऐसा करती थी क्योंकि शंकर दयाल शर्मा जी मीठे के बड़े शौकीन थे, लड्डू को खैर उनको बहुत ही प्रिय था, वो खीर भी बहुत पसंद करते थे, तो वो कुक पर नहीं छोड़ती थी, कभी कभी की बात मैं कर रहा हूं, वो अपने हाथ से ही बनाकर उन्हें खिलाती थी। तो अब आप देखिए कि ये जो प्रेम का धागा है जो एक दूसरों से जुड़ा हुआ है, वो किस तरीके से वहां उनमें उसी तरह से दिखाई दे रहा है जिस तरह से वो किसी में भी होता है। दोस्तों मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है और प्रतिदिन मुझे वो बात याद आती ही है कि जब राष्ट्रपति जी का कार्यकाल पूरा हो गया, आखिरी दिन वो अपने राष्ट्रपति भवन को छोड़ रहे थे, तो एक व्यक्ति, राष्ट्रपति भवन का एक व्यक्ति, बकायदे उनके जो फॉर्मल ड्रेस होते हैं ना, आपने देखा होगा लाल रंग का ड्रेस पहने रहते हैं, सिर पर चोंगा लगाए हुए होते हैं, वह व्यक्ति हमारे घर पर, हम लोग भी उस समय राष्ट्रपति भवन के कैंपस में ही रह रहे थे, एक तस्वीर लेकर आया, सरस्वती जी की तस्वीर, और लाने के बाद बोला कि इसे फर्स्ट लेडी ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि इसकी जो सही जगह है वो डॉक्टर साहब के यहां ही है, मुझे डॉक्टर साहब ही कहती थी, डॉक्टर साहब के यहां ही है, उनको देकर के आ जाओ। और दोस्तों मुझे ये कहते हुए बड़े सुख की अनुभूति हो रही है, सच पूछे तो आनंद की अनुभूति हो रही है कि वह तस्वीर, बहुत अच्छी प्रतिमा है, अभी भी हमारे लिविंग रूम के सबसे ऊपर हिस्से में लगी हुई है, और जब भी मैं मुख्य द्वार से प्रवेश करता हूं, कोई भी प्रवेश करता है, तो सबसे पहले वह तस्वीर साफ सुबह सुबह साफ साफ दिखाई देती है, हर समय दिखाई देती है, और सुबह सुबह तो जब मैं जाकर के उस तस्वीर को प्रणाम करता हूं, तो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं मेरा यह प्रणाम विमला शर्मा जी तक भी पहुंच जाता है। और अब जबकि उनका शरीर एक आत्म तत्व के रूप में परिवर्तित हो गया है, तब तो मैं समझता हूं कि मेरा यह प्रणाम और भी अधिक पवित्रता और गहराई के साथ उन तक पहुंचेगा। एक घटना की चर्चा मैं और करना चाहूंगा। मित्रों, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि ऐसे महान व्यक्तित्वों के साथ मुझे केवल रहने का ही नहीं बल्कि उनके साथ बातचीत करने का मौका मिला है, उन्हें महसूस करने का मौका मिला है। मैं एक तरह से कह सकता हूं कि उनका एक अनौपचारिक सलाहकार भी था, जब भी उन्हें किसी कार्यक्रम में जाना होता था, जाएं न जाएं, किस तरीके से करें, तो हमेशा मुझे बुलाती थी और उस पर मुझसे बातचीत करती थी। एक घटना की मैं याद दिलाना चाहूंगा और इसमें आप उनके बड़ेपन को देखिए। पहली बात तो ये है कि देखिए, वो भी राष्ट्रपति भवन में ही रहती थी, उनका परिवार रहता था, उपराष्ट्रपति भवन में ही रहती थी। दोस्तों इतने लंबे समय तक मैंने काम किया, लेकिन केवल मेरे ही काम में नहीं बल्कि ऑफिस के किसी भी अधिकारी के काम में कभी भी इन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और कभी भी सीधे सीधे आदेश नहीं किया कि तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे लिए करो। विनम्रता की तो जैसे साक्षात प्रतिमूर्ति ही थी और उनके चेहरे पर वो विनम्रता बिल्कुल टपकती रहती थी, मैं कहना चाहूंगा वो दिखाई देती थी, सरलता, सहजता, मासूमियत, लावण्यता वो हमेशा मौजूद रहती थी। मुझे एक घटना याद आ रही है और मुझे लगता है कि इसकी चर्चा मुझे करनी ही चाहिए कि राष्ट्रपति जी की अपनी एक प्राइवेट लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में एक अधिकारी हुआ करता था, वो राज्यसभा में था, तो उन्होंने डेपुटेशन पर राष्ट्रपति भवन में मैं लेकर के आया था। अचानक एक दिन पांडे, चलिए मैं पूरा नाम नहीं ले रहा हूं, एक दिन वो मेरे पास आए सुबह सुबह, बहुत ही हताश, निराश, उदास, बिल्कुल रोने जैसे, और उन्होंने कहा कि सर मेरा ये ट्रांसफर कर दिया गया है और ये ट्रांसफर ऑर्डर है। उनके साथ दिक्कतें हो रही थी कि सरकारी मकान था नहीं, राष्ट्रपति भवन के नाम पर उनको सरकारी मकान मिला हुआ था, ये बहुत बड़ी सुविधा थी। तो उन्होंने फिर घटना बताया, घटना कुछ यूं हुई थी कि राष्ट्रपति जी के बहू ने कोई किताब मांगी होगी, वो किताब पता नहीं कैसे उन तक नहीं पहुंच पाई, इससे वो नाराज हो गई, फिर उन्होंने विमला शर्मा जी से कहा होगा कि ऐसे ऐसे वो जो लाइब्रेरियन है ना उसने बात नहीं मानी, फिर ये बात सुनने के बाद सचिव ने उसका स्थानांतरण कर दिया, राज्यसभा वापस भेज दिया, मतलब राष्ट्रपति भवन से उसका ट्रांसफर हो गया और वो नहीं चाहता था कि उसका ट्रांसफर हो। वो मेरे पास आया, उसने सारी घटनाएं बताई और मैं वाच कर रहा था कि नहीं, घटना बिल्कुल सही है और इस लड़के की कोई गलती नहीं है। इस घटना को सुनने के बाद मैं राष्ट्रपति जी के सचिव के पास गया और मैंने कहा कि सर ये घटना है और इसके लिए वो माफी मांग रहा है, जबकि उसने कुछ ऐसी गलती की नहीं है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि देखो, अब इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लाइब्रेरी तुम देख रहे हो उनकी, तो तुम जाकर के सीधे राष्ट्रपति जी से बात कर लो, देखो शायद कुछ हो जाए। तो मित्रों, मैं डर रहा था क्योंकि इसमें देखिए उनका परिवार इन्वॉल्व था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके राष्ट्रपति जी से इसके बारे में बात की, उनके सामने पूरी घटना रखी। उन्होंने मुस्कुराकर धीरे से मुझसे केवल इतना पूछा कि क्या तुम श्योर हो कि जो बता रहे हो वो सही है। मैंने कहा कि हाँ सर, मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है। शाम तक उनका वह ट्रांसफर आर्डर कैंसिल हो गया। दोस्तों, सोच करके देखिए कि परिवार के सदस्यों के खिलाफ आप एक बात तरह से कह सकते हैं उन्होंने ये कदम उठाया, और इसको लेकर के कभी भी किसी के मन में कोई भी इस तरह से यूं कह लीजिए कि ईर्ष्या या द्वेष या क्रोध का भाव नहीं आया, और न ही कभी भी विमला शर्मा जी ने इसके बारे में चर्चा की कि उनके दिए गए आदेश को किसी ने उलटवा दिया। कितनी बड़ी बात थी, यहां ईगो का संकट आ सकता था लेकिन उसे उन्हें बिल्कुल आड़े ही नहीं आने दिया। तो दोस्तों, ये थी उनकी शख्सियत, अब वो नहीं रही। तो अंत में मित्रों, फिर से मैं उस शख्सियत के प्रति अपनी बहुत ही विनम्र और पवित्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, अपनी ओर से भी और अपनी पत्नी प्रीति की ओर से भी। फ्रेंड्स, अब कल मिलेंगे, फिर और बातें करेंगे। नमस्कार।